लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकिमार, जो चाल हम चले सुनिहायत बुरी चले। हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। नाजा न हो खिरत पे जो होना है वो ही हो, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश बरी चले। जाकी हवाए शौक में है इस चमन से जौक, अपनी बला से बादे सबा अब कहीं चले। मशहूर शायर जौक साहब की इन पंक्तियों को आज जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे कोरोना महामारी के हालातों पर ही इन्हें लिखा गया हो। सच्चाई यही है कि हम ना तो इस दुनिया में अपनी खुशी से आते हैं और ना ही यहाँ से जाते हैं, पर आज इस त्रासदी के चलते जब इतने अपने लोगों को असमय अपने बीच से जाता हुआ देख रहे हैं तो इन पंक्तियों के भाव कुछ ज्यादा ही समझ आ रहे हैं। एक लंबी जिंदगी जीने के बाद भी मृत्यु के समय हम यही सोचते हैं कि इस संसार में हमें रहने का अवसर ही नहीं मिला, अभी तो आए थे अभी जा रहे हैं। पर आज बहुत से लोगों के यही हालात बन गए हैं। इस कोरोना की त्रासदी ने बिना जिंदगी को जिए ही न जाने कितने लोगों को मौत के आगोश में सो जाने को मजबूर कर दिया है। परंतु ये भी सच है कि आज हमारी आपकी किसी की भी समझदारी काम नहीं आ रही और हम उस परम सत्ता के आदेशों को मानो सिर नीचा कर स्वीकार करने पर विवश हैं। हमारा जीवन उस परी कथा के समान है जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा है, लेकिन इस विवशता में भी हमें आशा की किरण तो ढूंढनी ही होगी और इन परिस्थितियों का सामना बहादुरी से करना होगा। आज हम सबने ही कुछ ना कुछ खोया है, हमारी रचनात्मकता सृजनात्मकता जैसे कहीं खो गई है। एक ही प्रश्न दिल में उठता है कि हमारा रचनाकार हमारा सृजनकर्ता कहाँ बैठा है, वो हमारा ये हाल कैसे और क्यों देख रहा है। जौक साहब ने ठीक ही लिखा है कि दुनिया से दिल ना लगाना ही बेहतर है, लेकिन किसे पता था कि आज हालात ऐसे होंगे कि हमारे बहुत से अपने इतनी बेदिल लगी से हमें छोड़कर चले जाएंगे। वास्तव में ईश्वर हम सबकी परीक्षा ही ले रहे हैं, तो हम सबको भावुकता के साथ साथ संवेदनशील होना होगा। हर दुख को अपना समझेंगे तभी आज की परिस्थितियों से उबर पाएंगे। हमें इस दुख को हराना है वरना ये हमें हरा देगा। इस दुख को कैसे हराएं, आज के हालातों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करें, इन सब बातों को करने के लिए आज हमने चुभन पर वरिष्ठ रंगकर्मी प्रभात कुमार बोस जी को आमंत्रित किया है। आप आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के फाउंडर डायरेक्टर हैं। आज उनके साथ उनके जीवन सफर और रंग सफर में भी उनकी हम सफर उनकी जीवन संगिनी अचला बोस जी भी होंगी। अचला जी आकांक्षा थिएटर से 1985 से ही जुड़ी हुई हैं और आप एक बहुत ही कुशल और संवेदनशील अभिनेत्री हैं। आपकी संवेदनशीलता आपके व्यक्तित्व की पहचान बन गई है। एक भावुक हृदय हमेशा ही दूसरों के दुख को समझता और महसूस भी करता है। अचला जी ने अपनी भावुकता को समाज सेवा की ओर लगा दिया है। आज सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है कि प्रभात जी और अचला जी की बेटी श्रद्धा बोस जी भी हमारे साथ होंगी। जो कि थिएटर जगत का एक युवा और जाना पहचाना चेहरा है। तो दोस्तों, जिंदगी के स्याह सफेद पन्नों पर अपनी कला और अभिनय से खूबसूरत रंग भरते इस रंगकर्मी परिवार के साथ एक मुलाकात करते हैं, उन्हें पॉडकास्ट से जोड़ते हैं।
नमस्कार। नमस्कार।
और सर कैसे हैं आप?
बस ईश्वर के और आपके आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा हूँ।
आशीर्वाद तो आपका हम लोग पर। और सर आप तो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, पर आज हमें इंतजार है कि आप और अचला मैम साथ साथ अपने जीवन के अनुभव और आकांक्षा थिएटर ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए किए गए अपने प्रयासों को हम सबके साथ शेयर करें। और श्रद्धा का साथ होना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वे भी एक युवा और जाना पहचाना चेहरा है थिएटर जगत में। बहुत अच्छा लगेगा आप तीनों से साथ साथ बात करके। और अचला मैम और श्रद्धा जी भी अभी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे।
जी 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 जी।
हाँ भावना जी नमस्कार। हेलो।
हाँ जी। हाँ जी अचला मैम नमस्ते।
हाँ नमस्कार।
श्रद्धा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रद्धा जी नमस्ते।
श्रद्धा जी हेलो।
हाँ जी
हेलो भावना, कैसी हो आप?
बस मैं भी बढ़िया हूँ मैम, आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। इतना ज्यादा कोरोना के कारण हम लोग कभी मिल नहीं पाते, न तो हमें हमेशा इंतजार रहता था आप लोगों के प्ले देखने का, और वो चीज तो एकदम रुक गई है मैम, अब क्या कहा जाए।
हम लोग भी इंतजार करते हैं अपने दर्शकों का, इसीलिए तो हम लोग प्ले करते हैं।
जी बिल्कुल मैम, वो तो है ही। और क्या है मैम, इस समय कोरोना के मतलब इधर 1.5 साल के अंदर इतना ज्यादा असर हुआ है जीवन पर, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी खासकर आप तीनों से, ये बात मेरा प्रश्न है कि क्योंकि आप लोग तो कलाकार हो और इस समय आप लोग की सृजनात्मकता पर तो जैसे एक रोक ही लग गई है, कैसे आप लोगों ने इस समय को लिया है?
देखिए परिस्थितियों के अनुसार हर इंसान को अपने अपने हिसाब से काम करना पड़ता है
जी,
और स्थितियां ही उसको विवश करती हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उस भयानक महामारी से इंसान बच सके।
जी सर।
इसी बात को दृष्टिगत करते हुए हमारे भारत सरकार ने मार्च 2020 में कोरोना के प्रकोप को और महामारी को अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लगाया।
जी जी।
लॉकडाउन से पूरा भारतवर्ष की जनमानस जहां पर थी एक तरीके से अगर आप मानिए तो वहीं पर वो रुक गई।
जी बिल्कुल।
वो इंसान की जिंदगी समझ लीजिए कि वो ठहर गई, या आर्थिक व्यवस्था का ये ठहर गई, या व्यापार जगत वो अपनी जगह पर ठहर गए, सारे लोग अपनी अपनी जगह पर ठहर गए।
बिल्कुल सर।
लेकिन उस ठहराव में जो जनमानस को जो दिक्कत हुई, जो परेशानी हुई, वो परेशानी हम लोगों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई महामारी आएगी हमारे जीवन काल में जो हमें एक नई परिस्थितियों के हिसाब से चलने पर मजबूर करेगी।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा और समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो बाजार और मॉल और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए उनके जगहों पर सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन पर भी उन्होंने रोक लगा दी
जी,
जिससे कि इस महामारी को और अधिक फैलने ना दिया जाए
जी सर,
और किसी हद तक इसको गवर्नमेंट कामयाब हुई कि इस महामारी को रोक ले, और रोका भी, बहुत कुछ रोका। लेकिन अब भी हमारे और आपके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही जरूर हो जाती है, जिसके कारण हम सारे लोगों को लापरवाही दो आदमी करता है लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है 20,000 आदमी।
बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
जी 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 जी, इस बारे में मेरी तो यही राय है, बाकी अचला जी आपको बताएंगी।
जी,
अब जो बोलना तो सर तो बोल ही चुके हैं, बस मैं ये कहूंगी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को खोया है अपने बीच से।
जी मैम, बिल्कुल,
हमारे बीच नहीं रहे हैं और ये महामारी तो बहुत ही खतरनाक है, और सुन रही हूँ कि जैसे थर्ड लहर जैसे आ रही है वो इससे भी ज्यादा मतलब वो होगी भयानक, हो
सकता आ चुका और उससे मरीज भी शुरू हो गए, तो अब तो वाकई डर लग रहा है सोचकर।
यहाँ पर इतनी मृत्यु दर बढ़ गई हो तो वहाँ पे हम कोई उत्सव कैसे मना सकते हैं?
ना ना, मन ही नहीं करता मैम किसी भी तरह का। देखिए, जीवन में दुख आता था, तकलीफ आती थी, तो हम लोग थोड़ा मनोरंजन का सोचते थे।
बिल्कुल बिल्कुल, अब इस समय हमारे खराब हुआ पड़ा है कि भाई हमारे घर में ना हुई हो, हमारे रिलेटिव्स में तो डेथ हुई है और भी लोगों में हुई है, भाई अगर इंसानियत का वो रखिए, आप दिल रखते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। इवन हम लोग अपने घर में भी खाने में भी कोई मतलब ऐसे बस खा लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कितने लोगों को खाना ना मिला होगा इस समय हम लोग जो खा रहे हैं, है ना। तो ये चीज अपने अंदर सोचते हैं, कितने लोग हमारे बीच से चले गए, है ना। इस समय बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने काफी सेवा करी थी, है ना, बहुत सारे लोग हमारे बीच में अब नहीं है, उनके लिए भगवान से बस यही प्रार्थना ही कर पाती हूँ कि भगवान उनको मतलब शांति प्रदान करे, उनके घर वालों को शांति दे, है ना। अब यही है, तो इसलिए मन खराब है तो थिएटर और उसका मूवी का कुछ सोच ही नहीं पा रही,
कुछ नहीं सोच सकते।
बिल्कुल, भावना जी बिल्कुल, मन ही बिल्कुल उछटा हुआ है,
एक जीने के लिए जैसे लग रहा है जीवन जी रहे हैं,
जीवन जी रहे हैं, कुछ अच्छा बनाने का भी मन नहीं करता है कि घर में कुछ अच्छा सा बनाया जाए, बस ये लगता है कि किसी की मदद करी जाए किसी भी तरह से। हम लोग तो निकलते हैं भाई, किसी को खाना अवेलेबल करा पाते हैं तो करा देते हैं, और जानवरों को भी जितना भी हम लोग कर पाते हैं। मेरी बेटी श्रद्धा जो है वो बहुत डॉग लवर है, तो उसने समझ लीजिए मोहल्ले के सारे डॉगीज के लिए पेटिग्री और घर में वो चावल और अंडे से उनको दो टाइम खाना देती है। हाँ, वो बहुत मतलब एनिमल्स को बहुत ज्यादा फेवर करती है। हम लोग से जितना हो सकता है, हम लोग के आस पास पूरा भाई हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम लोग से हो सकता है उतना कर श्रद्धा की भावना सुनिए।
हाँ जी बिल्कुल, श्रद्धा की भावना सुनाइए। बिल्कुल
श्रद्धा की भावना ये है, भावना कि एज एन आर्टिस्ट जब हम जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से जी, तो तब ये नहीं होता है कि जो पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट में लिखा होता है, जो स्टोरी लेकर चलते हैं, तब हम लोग ऑडियंस ने कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की होती हैं, फेस की होती है
जी।
वही चीज हम लोग फील करके उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। कनेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, चाहे वो किसी ऑडियंस, वो अपनी ऑडियंस से हो, वो बाकी लोगों को देखना हो, उनके दुख को तकलीफ को समझना हो, तभी तो हम लोग आर्टिस्ट कहलाते हैं, तभी तो हम लोग उन सारी चीजों को अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर पाते हैं, जो भी ईवल चल रहा है या बढ़िया चल रहा है, गॉडली चीजों को लेकर
सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आपका कहने का मतलब है
सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और सेंसिटिविटी के साथ साथ आपको इम्पैथेटिक होना चाहिए।
बिल्कुल,
सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए, आप सिंपैथी रखोगे तो आप एक दिन कर दोगे, दो दिन कर दोगे, जब तक कि आप एम्पैथेटिक नहीं होगे तब तक कि आप किसी के दर्द को समझ नहीं पाओगे, फील नहीं कर पाओगे।
बहुत अच्छी बात आपने कही श्रद्धा जी,
और आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जैसे हमारे पापा हैं प्रभात कुमार बोध जी, और हमारे गुरु हैं एक पुनीत अस्थाना सर, मम्मा, ये लोग कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनको बताते हैं। जैसे हम लोगों का एक अभी रिसेंटली चल रहा था रिहर्सल प्ले की, तो उसमें भी हम लोग ऐसी बातें करते थे कि हम लोगों के अंदर की इंसानियत ना मरे, हम लोगों के अंदर की कला ना मरे, तो मेन इम्पोर्टेंट इज इंसानियत, ह्यूमैनिटी, तब जाके हम कल्चर और आर्ट को पोर्ट्रे कर पाएंगे।
बहुत अच्छी बात है।
एज अ यूथ लोग ये समझते हैं, मतलब युवा लोगों को हम ये बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हमको नहीं जानते होंगे, हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, बट द थिंग इज कि हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कि हम लोगों को ऐसे सेमिनार्स अरेंज कराने चाहिए, जैसे ही ये लॉकडाउन खुले तो हम लोगों को पब्लिक के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप मीन्स आपका क्या ओपिनियन है एज अ ऑडियंस, आप क्या देखना पसंद करते हो? क्योंकि बहुत सारी मतलब प्ले में भी बहुत सारी डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक डिपार्टमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब बहुत सारे पीरियड प्ले होता है, एक तो पीरियड प्ले होता है, कंटेम्प्रेरी होता है और बाकी सोशल प्लेज होते हैं, तो उनकी भी एक व्यू लेना जरूरी होता है ऑडियंस पोल करके कि आप क्या देखना चाहते हो। हम ऑडियंस के लिए हम काम करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और आज जबकि ये कोरोना चल रहा है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी सारी चीजों को कलेक्टिवली पोर्ट्रे कर पाए, हम अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आजकल वेब सीरीज का टाइम चल रहा है, तो आई एम ऑल्सो अ वेरी कीन ऑब्जर्वर इन दीज वेब सीरीज, तो लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम ये क्या चाहेंगे कि हमें अपने स्टेज प्ले को नहीं छोड़ना चाहिए। मीन्स यू शुड नॉट मूव फ्रॉम योर रूट, जब आपकी रूट स्ट्रांग होंगे तब जाके आप एक स्ट्रांग ट्री बन पाओगे, तब आप फ्रूटफुल हो पाओगे।
जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात आपने और मैं आपसे यही चीज ली थी, स्पेशली मेरा ये प्रश्न आपसे ही होता कि मतलब आजकल लोग मल्टीप्लेक्स में जाकर और फिल्म देखना और ये सब पसंद करते हैं, लेकिन थिएटर जगत को वो जगह नहीं मिल पा रही है इस समय जो कि मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कनेक्ट होते हैं ऑडियंस से आप लोग।
एग्जैक्टली आप सामने सामने देख पाओगे, जब आप सामने जब वो तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनने को मिलती है लाइव, लाइव कॉन्सर्ट, लाइव शो इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब एक तरह से आपको फील कर पाते हैं,
आपको रीटेक का कोई मौका नहीं मिल पाता, बस आप वहीं आ रहा है,
तुरंत तुरंत आपको रिस्पांस मिलता है, आपने अच्छा किया आपको ताली मिलेगी, आपने अच्छा नहीं किया है तो ऑडियंस इतनी अच्छी होती है कि वो आपके लिए हूटिंग भी नहीं करती कि ये हो गया वो हो गया, वो करती चलो ठीक है, जैसे हम लोग एक बच्चे को कहते कि इससे गलती हो गई तो उसको माफ कर दो, तो ऑडियंस भी ऐसे ही करती कि चलो अच्छा इससे गलती होगी चलो माफ कर दो नेक्स्ट टाइम शी विल इम्प्रूव, तो ये सब होता है, ये मतलब आपको स्पॉन्टेनियस होता है सारी चीजें।
हाँ जी श्रद्धा जी आप क्या कह रहे थे?
हम ये बता रहे थे कि आजकल के टाइम में जैसे वेब सीरीज होती हैं वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है कि आपके सोच को विस्तार मिलता है कि आप थिएटर जगत में ऑन स्टेज लाइव परफॉर्मेंस में आप क्या क्या कर सकते हो।
जी
प्रोस्थेटिक्स का यूज या और सारी चीजें जो हमारी पहले ही से भारत यूज की जाती थी तो वो आजकल बाहर बाहर देशों में यूज हो रही है, उसका नाम हो रहा है, बट ये नहीं पता कि वो हमारी भारत से ही गई थी।
जी
तो जब हम अपने रूट से जुड़ते हैं तो हम आई एम गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि जब हम लोग किताबें पढ़ते हैं आजकल लोग किंडल पे और पढ़ते हैं, हम उसका अपोज नहीं कर रहे हैं कि अब पढ़ना चाहिए, मोबाइल है टेक्निकल जमाना है, बट आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप बुक्स पढ़ोगे स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आप उससे जुड़ोगे, आप सब भी उसको पढ़ सकते हैं, उसमें नेटवर्क इशू नहीं रहता है, उसमें टेक्निकल ग्लिचेस नहीं रहते हैं, उसमें आपके पास ये नहीं रहता कि बैटरी नहीं है, वो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहती है और लाइफ लॉन्ग आपके साथ।
आपने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना, ये सब बहुत ज्यादा महत्व रखती है बातें।
एग्जैक्टली
ये बात आपने बहुत अच्छी कही। जी
लोगों में आजकल स्टेबिलिटी नहीं है, वो कहते हैं कि हमें हीरो बनना है, हीरो उनके दिमाग में रहता है जैसे बॉलीवुड स्टार्स या हॉलीवुड स्टार्स, तमिल स्टार्स या बंगला मूवी के स्टार्स, तो वैसा नहीं होता, हीरो एक रियल लाइफ हीरो होता है, आपको अगर हीरो बनना है तो आप रियल लाइफ हीरो बनो, जैसे अब हम थोड़ा बॉलीवुड की तरफ अगर जाएं तो सोनू सूद जो हैं, जो वो काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, ही इज अ रियल हीरो, ही इज अ रियल हीरो, जो उन्होंने काम किया है उनको हीरो कहा जाता है, जो हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं, कितने सेक्रीफाइसेस देते हैं हमारी सारी चीजों के लिए, क्या क्या सोचते हैं, तो वो लोग हमारे हीरो होते हैं, हम लोग रियलिटी से हट के एकदम पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं हम हैं क्या। हैदर मूवी में एक लाइन वो बोलते हैं कि हम हैं कि हम नहीं, तो आप पहले खुद तो पहचानो कि हम हैं क्या, तब जाके आप आगे बताओगे किसी से, पूछो कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो सीधे अपना नाम बताता है अपना काम बताता है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि वो है क्या, तो आगे क्या बताएगा।
जी बहुत अच्छी बात आपने कही, खुद को हम पूरा जीवन जान ही नहीं पाते हैं,
हम जी ही नहीं पाते हैं। लोग कोरोना टाइम पे अपने कितने सारे जानने वालों को, माता पिता को खोया है, और रोज देखते हैं पापा, कभी देखते हैं कभी नहीं देख पाते, जल्दी सो जाते, तो पापा रोज हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मम्मा पूजा करती हैं, तो हम ये सोचते कि वो लोग मांगते क्या होंगे, वो लोग क्या प्रार्थना करते होंगे। फिर हमने एक दिन रात में लेटे लेटे सोचा कि नहीं, जो हम चीज सोचते हैं कि हाँ हमारे सब जानने वाले अच्छे हैं, बढ़िया है, अच्छे से जी रहे हैं, हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी का वो ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर ऑफरिंग इट टू योर यंगर वन और योर एल्डर वन, आप अपने छोटों को दे रहे हो या अपने बड़ों को दे रहे हो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, फील करो, तभी आप एक आर्टिस्ट कहलाओ। जरूरी नहीं है कि एक आर्टिस्ट हम स्टेज शो कर रहे हैं तो तभी हम एक आर्टिस्ट हैं। जब हम पैदा होते हैं तभी से हम एक्टिंग शुरू कर देते हैं, मम्मी से कोई चीज मांगनी होती तो कैसे प्यार से उनको मनाते, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिंग, आप एक्टिंग करते हो, आप एक्टर शुरू से रहते हो, लेकिन लोगों ने उसको अलग कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि एक्टर है। पहले तो और भी गलत गलत नाम थे, भाण, लिटरली भाण, गवैया, नौटंकी, एग्जैक्टली नौटंकी, नाटक नौटंकी, बट यू शुड रिस्पेक्ट कि हाँ वो हमें वो चीज कर रहे हैं, जो चीज हम रियल लाइफ में करते हैं वो चीज ऑन स्टेज कर रहे हैं, वो थोड़े हमसे ऊंचे हैं, मतलब हम लोग ऑडियंस से एक लेवल पे रहते हैं, मतलब वी आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड, क्योंकि हम लोग उस चीज को फील करने की हिम्मत रखते हैं कि हाँ जो फील करते हैं वो बोलते हैं,
और वो ऑडियंस की भावनाओं के साथ भी आप लोग कनेक्ट होते हो, तो एक तरह से हमारी भी भावनाएं वो होती हैं, जो प्ले देखकर हम कनेक्ट होते हैं, हमको रोना आ जाता है या हम खुशी से हंसने लगते हैं, तो आखिर हमारी भावनाओं को ही आपने व्यक्त किया तो ऐसा हुआ ना। Exactly. मैं आपको एक बताऊं, मोहन राकेश का प्ले हुआ था आपका ये आषाढ़ का एक दिन, और मैं और देखने गए थे, मैं आपको बताऊं कि वो इतना रोई है मेरे साथ, मतलब हम दोनों रोए और वो तो इतना ज्यादा रोई, और वो 2 साल हो रहे होंगे हमको वो देखे, और वो आज तक याद करती है कि दादा का प्ले होगा तो भावना चलेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग कनेक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर और लोगों के भी मैंने प्ले देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि SNA में या राय उमा नथवाली में जहाँ पे भी होते हैं हम लोग जाते हैं। बाहर के श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहूंगी, लखनऊ में तो आप लोग सबके लिए जाना पहचाना नाम हो, लेकिन मैं अपने बाहर के श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि आप लोग वाकई आकांक्षा थिएटर ग्रुप और उसके आर्टिस्ट एक लखनऊ के बहुत बड़े अच्छे और नामी लोगों में से हैं, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, और आप लोग की एक्टिंग मैम की, बोस दादा की, और आप लोगों की सबकी हमने देखी और बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग कनेक्ट होते हो हमारे साथ, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और भी मैंने प्ले देखे, लोग नहीं हो पाते, प्ले भी मैंने देखे और बड़े बड़े आर्टिस्ट के देखे, लेकिन नहीं लोग कनेक्ट होते उस तरह से जैसे आप लोग होते हो, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर।
हम लोगों को भी अच्छा लगता है, ऑडियंस अप्रिशिएट करे, वो भी स्पेशली आप जैसी ऑडियंस।
नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग को तो बहुत हमेशा अच्छा लगता है, हम लोग इस समय सबसे ज्यादा मिस आप लोग को करते हैं, या वो सामाजिक कार्यक्रम होता था सारी का, ये सब इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं आजकल कि क्या बोले। लेकिन अब सर ने जैसा शुरू में कहा कि ऐसी त्रासदी है कि हम लोगों को ये सब कहना और झेलना है, हम तो यही अपने मनोरंजन की चीज सोच रहे हैं, और जैसा भी अचला मैम ने भी कहा कि लोगों ने कितने अपनों को खोया है, और हमारे भी कितने अपने गए हैं, हमारे दोस्त, उनके घर वाले, इसलिए हम लोग तो बस यही कह सकते हैं कि सबको ये दुख सहने की भगवान शक्ति दे। अच्छा श्रद्धा जी, मैं ना सर से और मैम से एक बात पूछना चाहूंगी, आप भी इसमें जरा सामने रहोगे तो अच्छा रहेगा आज पूछिए
जी
बात, कि मैम और सर कैसे मिले, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें कभी एक बार सुनाई दी थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कब अच्छा। मिले, कैसे मिले और क्या घटनाएं हुई, जरा सा वो पता चले। सर से एक बार मैंने थोड़ा सा सुना था, पर आज अच्छा। मैम के सामने बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ही बताती हूँ, हम लोग इस थिएटर से ही हम लोग मिले, मुलाकात हुई हम लोगों की, कि रिहर्सल पे आती थी मैं बोस जी के यहाँ, ये हम इनको सर कहते थे, तो सर हमें एक्टिंग सिखाया करते थे। उसके बाद ऐसे इस तरह से आना जाना हुआ इनके थिएटर में, तो थिएटर का जो रिहर्सल होता था इनके घर में ही होता था, अच्छा, तो अच्छा। घर में इनकी मदर से और सिस्टर्स से सबसे मुलाकात होती थी, तो उन लोग को मैं बहुत अच्छी लगती थी, और बोस जी को भी अच्छी लगी। फिर वही हुआ, बहुत बड़ी बात नहीं हुई, मतलब प्रपोज किया इन्होंने पहले, और ऑन स्टेज इन्होंने हाथ वाथ काट लिया था
जी, वही मैं सुनना चाहती थी
जी। इन्होंने हाथ काटा था, एक लड़की सोच सकती है मतलब अचानक से ऑन स्टेज खून बह रहा है और वो एक्टिंग में है और चल रहा है, ऑडियंस देख रही है सामने, तो वो नर्वस से हो गए थे सीन के बाद में, तो वो चीज मतलब एक दिल में वो चला गया कि मतलब अरे एक आदमी ने हाथ काट लिया। देन मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इसके मतलब जरूर दिल से कहीं जुड़ाव हो गया है जी। तो बस ये सब रहा, उसके बाद इन्होंने प्रपोज किया और मैंने कहा कि मेरे अगर फैमिली अगर पसंद करेगी, आपको एक्सेप्ट करती है, तभी मैं भी एक्सेप्ट कर पाऊंगी। फिर इन्होंने मेरे घर में बात करी और फिर हमारी जो है इनसे शादी हो गई।
शायद जिस प्ले में आप काम कर रहे थे उसका नाम शायद सर ने बताया था मजबूरियां, उसका नाम था
मजबूरियां
बन गई आपकी।
हाँ मजबूरियां नहीं, मतलब खुशियों बता ये रहा और हमारा सफर तब से 85 से मैं जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे आकांक्षा थिएटर में। तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, 86 में मेरी शादी हुई, इस समय 44 इयर्स हो गए हमारी शादी को और तब से ही स्टेज कर रही हूँ। दादा से बहुत कुछ सीखा है और लोगों ने भी सिखाया, लेकिन मेरे पहले गुरु जो हैं प्रभात कुमार बोस जी हैं, जिनसे मैंने बहुत ही कुछ सीखा है और सीख तो आज भी रही हूँ। मतलब परफेक्ट तो इंसान कभी भी नहीं हो पाता। उसके बाद मेरी दो बेटियां हुई, पहले दीपिका, उसके बाद फिर श्रद्धा और एक बेटा है मेरे पास सुब्रतो। तो दोनों बेटियां भी हमारे साथ धीरे धीरे बड़ी हुई, तो पहले तो बाल कलाकार का उन्होंने रोल अभिनीत किया, उसके बाद धीरे बड़े होते होते अब यंग मतलब जैसे कि एंटी गनी होती है जैसे हम लोग का प्ले, उसमें दोनों ही बेटियां मेरी जो है हीरोइन बन जाती हैं। प्ले है मतलब अब हम तो बूढ़े वाले करेक्टर करते हैं या मिडिल एज वाले, कभी एक टाइम था तब हमने भी बहुत अच्छे अच्छे वो रोल्स वगैरह किए थे, बट आज हमारी
भी बहुत इतने सुंदर लगते हो कि आप अभी भी कर सकते हो हीरोइन वाले रोल, और जो करेक्टर रोल भी आप करते हो वो भी बहुत अच्छे आपके होते हैं। मुमताज का एक दिन का रोल तो मुझे भूलता नहीं आपका।
थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच। बस यही हमारी है और अपनी जर्नी ये चल रही है, और जैसे ही ये कोरोना का ये खराब पीरियड खत्म हो, सबसे पहले तो भगवान से यही कहती हूँ कि इसको पहले समाप्त कर दे, है ना, फिर हम लोग अपनी एक्टिंग में और उस तरह से जुड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो दिल में इतना दर्द और वो भरा हुआ है ना, तो अभी हम लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए दादा
सकते हैं कि आप लोग तो इतने क्रिएटिव लोग हो कि हमेशा प्ले और ये सब रिहर्सल होते थे और करते थे आप लोग, और के साथ कनेक्ट होना ही आपका काम था, और कैसे चार दीवारी में आप लोग कैद होकर रह रहे हो, तो ये तो चीज अब तक कला हर कलाकार के लिए मैं कह रही हूँ, ना सिर्फ आप लोग, सभी कलाकार इस समय घरों में कैद होकर रह गए, तो कितनी ज्यादा मजबूरियाँ लोगों
और मजबूरियाँ आ गई हैं
जी।
बस यही चाहती हूँ जी, जल्दी ये मजबूरियां खत्म हो जाएं और ये भयानक त्रासदी जो है सारी दुनिया से मिट जाए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी भगवान स्वस्थ रखे और इस प्रॉब्लम से बाहर निजात दिलाए। ये लीजिए बोल जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर से बात कर रहे हैं।
असल में बात दरअसल ये है
जी सर
कि हम लोग एक कुएं में मेंढक की तरीके से कूदते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इतना ही पानी हर जगह पर होगा
जी,
लेकिन ये हम लोगों की भावनाएं जो हैं ये गलत
जी,
गलत इसलिए हैं कि हम लोग जो अभिनय दर्शकों से जुड़ाव के मामले में करते हैं
जी,
उनके भावनाओं से अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं
जी,
तो हम लोग समझते हैं कि जो दर्शक हमसे जुड़ा हुआ है वो उससे अच्छा अभिनय दुनिया में कोई नहीं कर सकता
जी।
जहां दर्शकों की तालियां हम लोगों के कान में सुनाई पड़ती है तो हम लोग सोचने लगते हैं अपने आप में कि हम लोगों से अच्छा अभिनय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस तरह आप ये समझिए कि घर में हम लोग कुछ अच्छा डिश अगर तैयार करते हैं डिशेस, तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम लोगों से अच्छा कोई नहीं बनाता, लेकिन जहां हम अपने शहर से बाहर निकलते हैं या बाहर के शहर वालों को अपने शहर में बुला लेते हैं और उनके अंदर की प्रतिभा को दर्शकों के बीच में रखते हैं और खुद भी रहते हैं उन दर्शकों में, तो हमें ये समझ में आता है कि हम अपने आप को किस स्तर पर रख सकते हैं, हमारा क्लास किस स्तर पर है। इसी सोच को रखकर हमने स्टार्ट किया था राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव।
जी जी,
और राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव को हमने नाम दिया था रंगकर्मी एकता दिवस।
जी,
ये सबसे पहला नाम मैंने ही दिया था, रंगकर्मी एकता दिवस।
जी जी,
उसके अंतर्गत मैंने वेस्ट बंगाल के उषा गांगुली को बुलवाया और नादिरा बब्बर बॉम्बे से आई। तो इस तरह बहुत बड़ी बड़ी थिएटर की पर्सनैलिटीज हम लोगों के सामने आई और हम लोगों ने उनके सामने उनके अभिनय को देखा और समझा और दर्शकों के मध्य में रह कर देखा, तो हम लोगों ने ये समझा कि उनके और हमारे बीच में जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है वो इसलिए कि उनके हर क्षेत्र में बड़ा अनुशासन है।
जी,
थिएटर में अगर अनुशासन नहीं होगा तो वो थिएटर कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता।
जी,
ये तो मेरे अपने अनुभव की बात है कि मैं उषा जी को मैंने राज होटल में रुकवाया था और उनका प्ले होने वाला था रुदाली।
जी,
से हमने कहा कि दीदी आप जाइएगा नहीं रविंद्रालय में, तो कह रहे हैं कि नहीं है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि रुदाली का सेट तो वहां पर लग रहा है।
जी,
तो हमने कहा कि आप खुद नहीं मौजूद रहती हैं, कहने के नहीं मुझे मौजूद रहने की क्या जरूरत। मैंने एक बार जो सेट लगाएगा मैंने उसे समझा दिया, और सेट हमारे कोई बाहर का सेट डिजाइनर नहीं आता है, हमारे ही एक्टर होते हैं वो सेट लगाते हैं, हम क्यों सेट लगाएंगे। हम उनको बता देते हैं खाली कि हमें ये चीज चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स वो अपने हिसाब से उसको एक डिजाइन कर लेते हैं, और डिजाइन करने के बाद वो रविंद्रालय मंच के ऊपर वो उसी ढंग से लगाएंगे जिस ढंग से हमने चाहा है।
जी,
उसके बाद वो 6 बजे रवाना होती हैं हमारे साथ।
जी,
और 6:15 तक वो वहां पर पहुंच जाती हैं, और 6:15 से 6:30 15 मिनट में अपना मेकअप करके, उनके सारे आर्टिस्ट पहले से तैयार रहते हैं, और वो फोन पर पूछ लेती हैं कि मैं आऊं, तो जब वो कहते हैं कि हाँ आइए दीदी सब यहाँ तैयार है, तो तब वो जाते हैं और जाकर मेकअप करके बस तुरंत 5 मिनट का लेक्चर हम लोगों का जो खत्म होता है उसके बाद ही वो मंच के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने सीखा कि हमारे आर्टिस्टों में जो और उनके आर्टिस्टों में जो अंतर है, वो अंतर ये है कि हमारे यहाँ का आर्टिस्ट जो है वो सीखना नहीं चाहता।
जी,
वो स्टेज के ऊपर जब पहुंचता है तो वो कहता है सेट लगाना मेरा काम नहीं है। सेट तो सेट डिजाइनर या कारपेंटर लगाएगा, हमसे क्या मतलब।
बहुत अच्छी बात आपने कही सर।
सेट के ऊपर कूची लगाना मेरा काम नहीं है, वो तो पेंटर का काम है, पेंटर को बुलवाइए। तो वो आदमी जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, वो कभी भी सक्सेस आगे नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि हम अपने आप में ये गलत अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर 2 बार पब्लिक के क्लैपिंग मिली तो हम लोग सोच लेते हैं कि हमसे बड़ा एक्टर या हमसे बड़ा एक्ट्रेस अब कोई नहीं है, और हम लोग तुरंत वहीं पर अपनी कीमत लगा देते हैं।
जी,
कि हम 5,000 रुपए या 10,000 रुपए से नीचे काम ही नहीं करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगला जब आपको अपने प्ले में काम करने के लिए आमंत्रित कर रहा है तो वो आपसे ये उम्मीद भी कर रहा है कि आप उसके हिसाब से दर्शकों के समक्ष कुछ ऐसा पेश करें, प्रस्तुत कर दें जो दर्शकों के हार्ट को टच करके निकल जाए।
बिल्कुल ठीक।
ना कि ऐसा हो कि वो एक फॉर्मेलिटी हो। अब जैसे मैं अभी एक प्ले कर रहा था तो उसमें मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगी बताऊंगा उस एक्ट्रेस का,
जी जी,
प्ले था तुगलक।
जी।
तो उस प्ले में मैंने 1,95,000 रुपए का राजमहल का सेट गॉडगे में लगाया, और लगाने के बाद मैंने ये उम्मीद किया था कि उस सेट के ऊपर जो भी ड्रेस परिकल्पना थी वो मेरी और इब्राहिम अलकाजी साहब की खुद की थी, और वैसे ही अलकाजी साहब ने मुझे बताया था जैसा मैंने उतारा था उसमें ड्रेस
जी।
तो वो ड्रेस भी मैंने ही 87,000 रुपए के खुद ही बनवाए थे
जी।
आज भी मेरे पास है वो सेट। तो उसमें जो एक्ट्रेस थी, मैं उनका नाम आपके सामने नहीं बताऊंगा, कि मैं आपको समझती थी कि मैं बिल्कुल माधुरी दीक्षित हो गई हूँ
जी।
और हमारे सामने आकर उन्होंने ये कहा कि हम 20,000 रुपए से नीचे काम ही नहीं करते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप अगर किसी के कहने से मेरे पास आई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ही उठता है कि जब मंच के ऊपर, मंच के ऊपर जाने से पहले तो डायरेक्टर डायरेक्टर रहता है, लेकिन जहां वो मंच के ऊपर चला गया एक्टर, तो फिर डायरेक्टर इज डेड, वो खत्म हो जाता है। फिर तो एक्टर इज डायरेक्टर, जो एक्टर कर रहा है वही दर्शक सोच रहा है कि डायरेक्टर ने शायद ऐसे ही बताया होगा
जी।
डायरेक्टर सामने बैठ के देख रहा है या लाइट बूथ पर है, वो तो समझ रहा है कि कहां पर क्या गलती हो गई, कहां पर क्या हुआ, वो तो पब्लिक नहीं समझ पा रही है। तो उसमें हुआ ये कि उस एक्ट्रेस को तुगलक को समझाने के लिए राजमहल के अंदर से आना चाहिए, और वहां 3-4 कैमरे लगे हुए हैं जो शूट कर रहा है, और वो राजमहल के बाहर आउटर से चली आ रही है अपने बेटे को समझाने के लिए
जी।
अब आप बताइए, क्या आप कह सकती हैं कि वह प्रोफेशनल एक्टर है?
तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि उनका ध्यान भटक गया, उनसे गलतियां हो गई।
अब ये तो देखिए, ये तो वही बेहतर जान सकेंगे कि उनका ध्यान भटक गया या ये तो उनकी जिम्मेदारी, मॉरल जिम्मेदारी होती है हर कैरेक्टर की, कि जिस वक्त प्ले का कर्टन खुल रहा है उस वक्त वो किसी से बात ना करे, केवल अपने बताए हुए डायरेक्टर के बताए हुए डायरेक्शन के हिसाब से काम करे और अपने रोल के अंदर इन्वॉल्व हो, ये उसका मॉरल ड्यूटी है। और अगर वो अपने ड्यूटी से अलग हट के कभी भी अलग हटेगा तो वो ऑटोमेटिकली गलती कर जाएगा, और उस गलती क्या मतलब पब्लिक नहीं समझ पाएगी कि इनको राजमहल के दरवाजे के अंदर से आना चाहिए था या इनको ऑडियंस की तरफ से आना चाहिए, राजमहल के आउटर से आना चाहिए, ये पब्लिक नहीं समझ पाई। ये तो समझा, एक मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मैं ही समझा कि ये तो बाहर से चली आ रही है अपने बेटे को समझाने के लिए, राजमहल के अंदर से आएगी या बाहर से आएगी
जी।
तो उतने से काम के लिए मुझे 18,000 रुपए देकर सिनेमाटोग्राफर और एडिटर को बॉम्बे से बुलाना पड़ा, और उसके बाद वो आया बॉम्बे से आके, और उसने सिनेमाटोग्राफी करके उस एक्टर को बैक किया, और बैक करके उसके महल के दरवाजे के अंदर से निकाल के लाया। तो इतनी बड़ी कठिनाई एक जरा सी एक्टर की गलती की वजह से हो गया।
अब आप देखे सर, आपने अभी छाया गांगुली जी का नाम लिया और इनकी दोनों के साथ साथ बात की, वहां पर कितना उनका समर्पण था अपनी कला के प्रति, और यहाँ पर ऐसी चीज, तो ये तो क्या कहा जाए कि कलाकार की गलती है।
वही मैंने कहा ना कि आज का एक्टर जो है वो सीखने का कुछ प्रयास ही नहीं करता। अगर उसको ये पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 W's, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 W's, तो वो बता ही नहीं पाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, वो नहीं बता पाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिक एंड व्हाट इज द थ्योरी ऑफ स्टैनिस्लावस्की एंड विलियम शेक्सपियर, तो नहीं बता पाएगा
जी।
और है शाहरुख खान में भी पॉसिबल,
बिल्कुल
कैमरे के सामने हमारे गुरुजी इब्राहिम अलकाजी साहब ने और गिरीश कर्नाड साहब ने ये बताया था कि दादा स्टेज के ऊपर अभिनय करने में अगर ट्रेजेडी एक्टिंग पर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो उसमें आपको दो एक मिनट का समय मिल जाता है, लेकिन कैमरे के सामने आप जिस वक्त जाओगे और ट्रेजेडी एक्टिंग करने जाओगे तो उस वक्त आपको केवल तीन से पांच सेकंड का समय देगा। डायरेक्टर उस वक्त ये नहीं देखेगा, वो प्रोफेशनली काम कर रहा है, वो आपको ये नहीं देखेगा कि आपके आंखों में आंसू कैसे आएंगे या आप कितना गले से वो करके बोलेंगे क्या करेंगे, वो ये सब नहीं जानता। वो तो आपसे काम चाहता है क्योंकि आपने उससे कहा कि मैं इस रोल के लिए आपसे 20 लाख रुपए लूंगा और उसने एक्सेप्ट करके दिया है
जी।
आपको 20 लाख रुपए, तो इसलिए आपके हिसाब उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और अगर दो कट लग गए तो वहीं पर डायरेक्टर परेशान हो जाता और वहीं पर डायरेक्टर एक्टर को कहने लगता कि आपको आता क्या है जो आप अपनी कीमत लगा रहे हैं
जी। ऐसे में वो उसी तालियां गिना देते हैं कि हमको तो इतनी तालियां मिलती हैं।
हाँ, आज का एक्टर सीखना तो पसंद ही नहीं करता, वो अगर कोई बोले हाँ ये मैं कर लूंगा, हाँ ये मैं कर लूंगा, हाँ ये मैं देख लूंगा, अरे यार जब तुम अभी नहीं 5 आदमियों के सामने जब रिहर्सल पे नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या यार 250 और 500 आदमियों के बीच में जाके वहां स्टेज का कर्टन जब खुलेगा और तुम्हारे ऊपर हजारों वॉट की लाइट पड़ेगी और म्यूजिक फॉलो अप करेगा तुमको, तो कैसे तुम अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे? यहाँ तो तुम 5 आदमी के सामने कर नहीं पाओगे तो वहां कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लोगे? यही बात भाई, इसीलिए आदमी दो एक, इसीलिए आप देखिए लखनऊ में जितनी भी फिल्मों की शूटिंग होती है, वेब सीरीज की शूटिंग होती, मुझे आपने कभी नहीं देखा होगा।
नहीं कभी नहीं।
मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, क्यों जानते हैं? इसका एक मेन काम ये है कि बॉम्बे वाले इतने इंटेलिजेंट और चालाक होते हैं, वो ये समझते हैं कि यूपी के एक्टर्स जो है वो बेवकूफ है, उनको केवल इस्तेमाल कर लो बस, और कोई काम नहीं। और भीड़ आपको खड़ा कर देंगे, दो एक डायलॉग दे देंगे और देने के बाद आपसे कह देंगे कि ये बोलिए। अब आपने बोला और उसके बाद उसने कहा ये लीजिए, और कभी कभी वो 2000 रुपए और 3000 रुपए भी लेकर भाग गया, आपको पैसे भी नहीं दिए उसने
जी। लेकिन लग गया कि आपने फिल्म में काम किया या वेब सीरीज में किया, ये चीज हो जाती है।
मोहर लग गई कि मैंने में काम किया, और जब वो फिल्म रिलीज हुई तो मालूम हुआ उनका सीन है नहीं
जी।
हमने एक एक्टर से पूछा अपने यहाँ संस्था में, हमने कहा गुरु तुमने कहा था कि मैं रेड में बहुत अच्छा मैंने काम किया, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़े
जी।
तो पहले कहते हाँ मैं असल में मेरे बहुत सारे सीन लिए गए थे लेकिन वो काट दिए गए, केवल उस सीन में रखा गया कि मैं सौरभ शुक्ला के घर में बक्सा घसीट के ला रहा हूँ, बस उतना ही सब।
बता एक्स्ट्रा टाइप का रोल हुआ तो
ये सब क्या है
सर? आपने कम आ रही है सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है।
आदमी जब अपने आप को नहीं संभाल पा रहा तो क्या किया जाएगा
सर? ये छोटे मोटे फिल्मों के रोल करना वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन थिएटर में एक अच्छा रोल मिलेगा तो वो करना वो अपनी तौहीन समझते हैं, ये चीज आप।
जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए
आप देखिए कि मुंबई और दिल्ली, खासकर मुंबई में तो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार जो हैं, वो शेखर सुमन और इस तरह के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं वो थिएटर ही करना ज्यादा पसंद करते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, और क्या
जी,
क्योंकि इसमें हम लोग मतलब देखिए हर चीज का एक्शन रिएक्शन होता है, हम लोग एक्शन करते हैं तब पब्लिक की तरफ से हम लोगों को रिएक्शन मिलता है
जी।
और फिल्म में अगर आपने काम कर लिया, मान लीजिए 4 डायलॉग भी आपने कैमरे के सामने बोल लिया, तो आपने तो एक्शन कर दिया लेकिन रिएक्शन आपको कहाँ मिला?
मिला
रिएक्शन तो आपको मिलेगा 2 महीने 3 महीने बाद जब वो फिल्म कभी रिलीज होगी तब मिलेगा
जी।
और इसमें तो होता है डायरेक्ट एक्शन रिएक्शन, मतलब हम आपसे डायरेक्ट हमने एक्शन किया, आपके ऑडियंस की तरफ से आपने रिएक्शन दे दिया मुझे
जी जी।
वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार।
सर अब थिएटर भी एक तरह से एलीट क्लास की चीज बनकर रह गई है, अब हर वर्ग के लोग थोड़ा कम देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, मैंने ये देखा, जबकि थिएटर को तो बहुत आगे आना चाहिए क्योंकि हमारी शुरुआती विधाओं में से एक है ये।
जब थिएटर को इसलिए नहीं देखना चाहते हैं लोग, हम आपको उसका मेन कॉज बता दें। थिएटर को इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि मीडिया ने, फिल्म वालों ने ग्लैमर को इतना ज्यादा अपने फिल्मों में महत्व दे दिया कि आज की पब्लिक ग्लैमर देखना चाह रही है।
बिल्कुल सर।
और स्टेज के ऊपर आप जानते हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टेज पर ग्लैमर हम लोग नहीं दिखा सकते।
जी।
हम लोग वही चीज रियलिटी बिल्कुल दिखाते हैं और वो रियल चीज देखना नहीं चाहते, वो तो ग्लैमर देखना चाहता है, बस यही फर्क है।
अब हालांकि एक बार हम लोग तो बहुत कम देखते हैं, आप ही के ज्यादातर हमने देखे हैं, और एक आध बार वो मुंबई से कुछ आए थे, वो कल की कोचलिन और इन सब के थे प्ले, वो देखे थे सर एक बार। और अब मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक बार मैंने ये संगीत नाटक एकेडमी में देखा था कि एक प्ले हुआ था, और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ज्यादा उसमें गालियों का प्रयोग किया गया था कि मैं कुछ बता नहीं। तो अब प्ले में आप जैसा कह, मतलब इतना तो फिल्मों में भी मैंने उन गाली मत वो गालियां सुनी नहीं होंगी हमने कभी, कोई अच्छे क्लास के लोग उन गालियों का प्रयोग करते ही नहीं होंगे, उस तरह की गालियों का प्रयोग था। और फिर बाद में मैंने उन लोगों से बात की तो उन्होंने ये बोला कि क्योंकि पुलिस वालों को दिखाया था या गांव देहात के छोटे छोटे बच्चे आ गए थे और उन लोगों ने एक्टिंग की थी तो उन लोगों को पता नहीं था, इसलिए उन लोगों ने ये गालियां दे दी। अब ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि गालियां उन लोगों ने ऐसे दे दी, तो आप क्या कर रहे थे फिर, आपसे रोका नहीं था? मतलब इतनी गालियां थी कि हम शायद 15-20 मिनट देख के हमें उठ जाना पड़ा कि हम देख नहीं सके उस प्ले को।
जी हाँ बिल्कुल सही।
इस तरह की चीजें भी होती हैं कि वही वाली बात कि अपने को बदनाम करके नाम करो, ऐसा भी होता है।
लेकिन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है।
प्ले तो सर अपना स्तर बना के रखते हैं, और तुगलक की आपने बात की तो वास्तव में आपने तो तुगलक को जिंदा कर दिया था लखनऊ की सरजमी पर। तो आप लोगों का डेडिकेशन है काम के लिए, समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है सर।
जी जी जी, अचला जी से बात कर ली।
अचला जी से भी मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि अचला मैम समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं आप मैम।
हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि अपनों के लिए तो सब कुछ करता है कोई, है ना, लेकिन दूसरों के लिए मैं क्या कर रही हूँ, है ना। कम से कम आपके जाने के बाद, मतलब मेरे जाने के बाद कुछ लोग हमें याद रखें, उसके लिए मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि किसी के लिए मैं कुछ कर पाऊँ अपने जीते जी। तो मैंने कहा कि पूरा समाज तो नहीं, लेकिन ज्यादा जगह तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ बच्चों को लेकर के मैंने पहले फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाई लिखाई, उनके सारे पढ़ने का वो बस्ता, किताबें, कॉपियां, सब चीज मैंने प्रोवाइड करवाई। कुछ लोगों को मैंने दुकानें, जैसे कि थोड़ा सा ठेला लगवाया और टोकरी में थोड़ा सा सब्जी वगैरह या फल वगैरह का वो करवाया इस तरह से। फिर मैंने लड़की जो मतलब उसकी मदर ने बताया, मेरे यहाँ काम करती थी, कि मेरी लड़की जो है वो किसी के यहाँ है और वो उसने पढ़ने भी नहीं देते हैं और कुछ भी नहीं करने देते हैं, सिर्फ काम कराते हैं और मारते हैं। तो मैंने उस लड़की को वहां से निकलवा के अपने पास रखा, उसको अच्छी शिक्षा दिलवाई, उसको पढ़वाया मैंने। उसके बाद उसका मन कहीं लग गया तो मैंने उसकी शादी करवाई। उसके बाद अभी एट प्रेजेंट मेरे पास एक लड़की है जो 6th से पढ़ रही है और अब इंटर कर लिया उसने, तो उस लड़की को भी मैंने शिक्षा दी और अपने पास रखा हुआ है। अभी आगे वो आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है, ग्रेजुएशन करना चाहती है, तो अभी तो थोड़ा सा वो लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसको वो करवाऊंगी और जहां तक मैं कर पाऊंगी उतना मैं करूंगी। मतलब मेरे को ये सब काम करके अच्छा लगता है।
जी जी,
यही सब मुझे करना।
कार के अंदर संवेदनशीलता मैम हर इंसान के अंदर ही होनी चाहिए, हम लोग सेंसिटिव नहीं रहे तभी ये सारी परेशानियां आ रही है। शायद अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी महामारी भी इसलिए आई कि हम लोग संवेदनहीन एकदम हो चुके हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सब गलतियां हमारी हैं, ये सब गलतियां हमसे ही हुई हैं। प्रकृति से हम लोगों ने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करी है,
खिलवाड़ किया है। जी
बिल्कुल, और इसीलिए प्रकृति ने हमको ये सजा दी है, ये हमारे ही कर्मों का फल पा रहे हैं हम लोग।
अब उसमें भी हमने तो नहीं किया, हमें क्यों मिल रही है, लेकिन फिर ठीक है, किसी ने भी तो हम सबको भुगतनी होगी। और फिर गलतियों से रहित तो कोई भी नहीं है, हम सब नहीं कुछ ना कुछ है मैम।
बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात है, ये
अपने बड़ों का हम सम्मान नहीं करते, माता पिता साथ रखना लोगों को बाहर रखना है,
बाहर होता है,
ये बहुत गलत होती है मैम, तो उन सबका भी परिणाम। और जैसा भी सर ने कहा कि कलाकार जो है वो अपने को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं और फिर कनेक्ट नहीं होते, कुछ छोटा कार्य नहीं करना चाहते, जैसे छाया गांगुली जी का उदाहरण दिया कि वो थी। लेकिन मैम मैं ये चीज कहूंगी कि ये बात खाली थिएटर के कलाकार या खाली कलाकारों के ऊपर ही नहीं है, ये हर जगह में है ये चीज, हर चीज
बिल्कुल,
कोई भी हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, तो लोग अपने को बस हम कुछ कर रहे हैं तो नहीं, बस हमसे तो ऊंचा कोई नहीं, तो हम सीखना चाहते। मान लीजिए मैं लिखती हूँ अगर, तो मैं अपने को बहुत बड़ा राइटर समझ लूंगी कि मैं सीखना नहीं चाहूंगी, जब तक मैं अपने पढ़ों से कुछ सीखूंगी नहीं तो मुझे कैसे कुछ आएगा या बोलना आएगा। तो ये चीज हर जगह पर है, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत दुख पा रहे हैं जीवन में।
तो
ये
सही बात कह रही,
कैसे बता रहे हैं कि आप दूसरों के लिए इतना करते हो।
जी
आप लोगों से तो बात करना हमेशा ही अच्छा लगता, मन ही नहीं करता कि आपसे बात हम खत्म करें, और लेकिन फिर क्या समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता
है।
श्रद्धा जी से कुछ कुछ कहना चाहे आखिरी में।
हाँ श्रद्धा, हमको बहुत अच्छा लगा अपनी सारी चीजें रखकर।
जी जी,
वर्ड्स आर नॉट इनफ, कभी पूरे नहीं पड़ते अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, भावना लेकिन श्रद्धा और भावना एक इंसान के अंदर होनी चाहिए,
होनी चाहिए। चलो श्रद्धा और भावना फिर से मिलेंगे, एक बार हम और आप मिलके करेंगे कार्यक्रम, उसमें खाली मेरी और आपकी भावना और श्रद्धा की बातें होंगी खाली।
जी जी बिल्कुल,
भगवान जल्दी मौका करे कि मैं आपका थिएटर देखने आऊं और फिर आप हमारे साथ कार्यक्रम में साथ साथ हम करें।
बिल्कुल बिल्कुल,
एक दूसरे के साथ वर्चुअल ना हो कार्यक्रम।
जी
बहुत अच्छा लगा श्रद्धा, मुझे भी बात करके आपके साथ, मैम से और सर से तो हमेशा बात होती रहती है, आपसे आज करके बहुत अच्छा लगा। और सर को, सर को, सर एक मिनट सर को दीजिएगा मैम।
जी भावना जी,
सर कुछ अंत में कहना चाहेंगे और हम लोग के लिए कोई ऐसी शिक्षा, आप तो एक संस्था है पूरी अपने अंदर।
जी जी जी,
आपसे तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिए कोई सीख।
मैं तो यही कहूंगा और यही अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताऊंगा कि आने वाली युवा पीढ़ी, हम लोग तो अब बीते हुए कल की बात को करते हैं,
सर कलाकार कभी बीते हुए कल के नहीं होते हैं, कलाकार हमेशा कलाकार होते हैं, कभी।
लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी के कंधों पर जो रंगकर्म का बोझ है, रंगकर्म का बोझ न कहें उसे, रंगकर्म का भार कहें, कि रंगकर्म का भार और जिम्मेदारी, उसको वो एहसास करके और रंगमंच पर साकार करेंगे तो निश्चय ही भारतीय इतिहास में लखनऊ ही नहीं बल्कि अवध का रंगमंच भी अपना एक नवीन स्थान प्राप्त कर सकेगा।
जी सर, बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी बात सर कही। और लखनऊ की तहजीब तो पूरे देश का, विदेश तक में भी, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, संसार में।
जी,
तो
जी,
सर यहाँ की तहजीब को आगे बढ़ाना है, आप लोगों के कंधों पर वाकई ये भार है और हम सबके, ये हम सबको करना है सर कुछ ना कुछ, और हम लोग मिलकर।
बिल्कुल बिल्कुल
जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। अचला मैम, श्रद्धा जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, और बहुत जल्दी
आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार,
मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। आपके नमस्कार सर,
नमस्कार,
बाय श्रद्धा,
बाय बाय।